नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं जयपुर डायलॉग्स। और आप सभी को हर घर तिरंगा की बधाई और हमारे स्वतंत्रता दिवस की जो कल आने वाला है उसके लिए अग्रिम बधाई। और जिसको स्वाधीनता का अमृत दिवस जिसको हम बोलते हैं, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, उस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की भी बधाई। कुछ लोग इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि ये जो आज़ादी का जो संदर्भ है, हमारी स्वतंत्रता हमारी स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में, वो बिल्कुल गलत लिया जा रहा है। क्योंकि उस समय पूरा खिलाफत आंदोलन था, जो पूरा मुस्लिम लीग का आंदोलन था, जो पूरा पाकिस्तान आंदोलन था, वो सब कुफ्र से आज़ादी के लिए था। इसलिए स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की बधाई। और वह पाकिस्तान जो आज़ादी कुफ्र से लेकर बना था, उसका क्या हाल है आज, इस पर भी हम बात करेंगे। यानी कि पाकिस्तान, यानी कि पाक जमी, यानी कि पाक का मतलब हुआ क्या कहें उसको, पाक मतलब प्योर, शुद्ध। तो वो जो थी वो शुद्ध जमीन बनाई गई थी और उसका आधार ये था कि मुसलमान हिंदू के साथ रह नहीं सकता। वैसे तो बात सही है उनकी, मुसलमान हिंदू के साथ रहना जो है ये नाजायज़ करार किया गया है। हदीस में भी लिखा गया है कि आप जहाँ भी मुशरिक हों वो ज़मीन छोड़कर चले आएँ। तो ये जो हमारे जो अभी बचे हुए हैं, ख़ास तौर से जो हमारे तथाकथित इनसिक्योर लोग हैं, जो अशराफ मुल्ला मौलाना वर्ग है, वो जो यहाँ पर लगातार भारत में असुरक्षित महसूस करता है, उसको ये फिर से याद करना चाहिए कि उसके हदीस है भाई पूरी 1604 तिमरीजी की कि जहाँ मुशरिकीन हो वहाँ रहा नहीं जाता, वहाँ से हिजरत की जाती। लेकिन ये जो पाकिस्तान जो बना था, एक तरह से चमचागिरी करके वेस्ट की बना था, अंग्रेज़ों की चमचागिरी करके बना था, अंग्रेज़ों को यह उसने अपनी एक कमिटमेंट दी थी कि वह उनकी वेश्या बनकर रहेगा, उसने ये वेश्या वाला जो रोल था वो तो काफ़ी अच्छी तरह से निभाया। और चूंकि उसने जो अपनी आइडेंटिटी थी वो एक मुस्लिम उम्मत की आइडेंटिटी, अपने आप को उम्मत का रखवाला दिखा के, मुस्लिम उम्मत का, इस्लामी उम्मत का कोशिश की थी, तो उसको ये लगता था कि उसको जो है मुस्लिम दुनिया में बहुत इज्जत मिलेगी। लेकिन अरबों ने उनको ज़रा सा भी ढेले पर भी नहीं गाँटा और उनको उसी तरह से हिंदू कहते रहे जैसे कि भारतीयों को कहते हैं। उसका कारण ये है कि जिसको हम हिंद कहते हैं, हम सोचते हैं जब हम जय हिंद कहते हैं तो जय हिंद इसलिए कहते हैं कि हिंद अरबी का शब्द बताया जाता है। लेकिन जो अरबी में जो हिंद शब्द है, वो जो बोल चाल की अरबी है, या जिसको हम कहते हैं कि गंवार अरबी, उसमें हिंद कहा जाता है। लेकिन जो शुद्ध अरबी है, यानी पाक अरबी जो भाषा है, उसमें शब्द है हिंदू। यानी भारत के लिए शब्द हिंद नहीं है, हिंदू है। इसलिए यदि आप जय हिंदू कहेंगे तो वो और भी उचित होगा। ये बिल्कुल कॉनराड एल्स्ट साहब ने पूरी विवेचना करके ये बता दिया है सबको कि ये शब्द जो है वो जय हिंदू है, इसलिए आप जय हिंदू कहेंगे तो और भी आनंद है। जय हिंद कहें, जय हिंदू कहें। अब हमारा जो ये पाकिस्तान है, ये बना था पूरे की तरह, इस तरह इसने जब बनाया था तब ये था कि साहब की ये तो नया मदीना है, और नए मदीने का इसका पूरा का पूरा जो ख्वाब था वो पूरी तरह से जो अरब मिथोलॉजी है, जिसको मैं कहूँगा वो मिथोलॉजी ही है, जिसमें हज़रत मोहम्मद जो है वो मक्का से मदीना जाते हैं और मदीना में अब जाकर अपने आप को मजबूत करते हैं और वापस मक्का पर कब्ज़ा करते हैं। तो ये सारे के सारे सूफ़ी बरेलवी और शिया और अहमदी ख़ास तौर से जब पाकिस्तान बना के वहाँ गए थे हिजरत करके यहाँ से, तब उन्होंने कहा था कि हम हिजरत कर रहे हैं, जैसे कि रसूल ने हिजरत की थी, और रसूल अल्लाह की जो हिजरत है हम उसी की तरह हिजरत कर रहे हैं और उसी की तरह हम वापस आके जो मक्का है इसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे। अब हो गया सारा का सारा 75 साल में उल्टा, क्योंकि 75 साल पहले जब पाकिस्तान ने, आपको याद दिलाऊं कि जब पाकिस्तान ने शुरू किया था तो उस समय जो देश की सबसे उपजाऊ ज़मीनें, और न केवल सबसे उपजाऊ ज़मीनें, जो एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज थी, जो नए प्रकार के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हिसाब से अंग्रेज़ों ने बनाई थी, विकसित की थी, वो सारी की सारी पश्चिमी पंजाब में आती थी। पश्चिमी पंजाब इस पूरे भारत का एक तरह से हम कह सकते हैं कि अन्न भंडार हुआ करता था, ग्रीनरी ऑफ इंडिया। और भारत को बड़ी समस्या आई आरंभ में, क्योंकि जो भारत के साइड में जो पंजाब रह गया था वहाँ पर नहरें इत्यादि नहीं थी, सारी की सारी जो नहरें थी वो पश्चिमी पंजाब में ही थी। और भारत ने अपना सारा ध्यान खेती में इम्प्रूवमेंट पर दिया, यहाँ पर बांध बनाने, नहरें बनाने, यहाँ पर उद्योग विकसित करने पर दिया। और हमारा जो पाकिस्तान है वो क्या करता रहा, और नाराए तकबीर करता रहा, और नाराए तकबीर करते करते यहाँ तक पहुँच गया कि भाई खाली की खाली तकबीर ने पूरी तकदीरी बिगाड़ दी। और तकदीर बिगाड़ के आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान जिसको कहते थे कि साहब भारत से आगे है, हर तरह से आगे था भाई। एक ज़माने में वो उसकी जो ग्रोथ रेट हुआ करती थी वो भारत से दोगुनी तीन गुनी होती थी, और पूरी दुनिया ये कहती थी कि अरे भारत में क्या रखा है, ये तो गरीब देश है और ये तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो साहब बड़ा मॉडर्न है, वहाँ के लोग जो हैं वो पूरी तरह से क्रिश्चियन आउटलुक के हैं, वेस्ट का नेचुरल एलाई है। अब कहाँ है पाकिस्तान, अब लेके कटोरा भीख मांगता है पाकिस्तान, चारों तरफ घूम घूम के कहता है कि भाई ये देखो हमारी करेंसी पिट गई है, अब हम एक डॉलर में 250 का रुपए का रेट हो गया है। और बाकी जैसे ही पैसे कोई आते हैं वहाँ पर इधर उधर से भीख मांगता है, भीख मांग के जब पैसे मिलते हैं तो वो भीख मांग के दिए हुए पैसे जो हैं वो सारा का सारा उनका जो अशराफिया क्लास है और जो मिलिट्री है वो उड़ा देती है, और उसके बाद दुबई में रियल एस्टेट के भाव बढ़ जाते हैं। तो क्या है जिसको ये पाकिस्तान पाइंदाबाद कहते थे, उसकी मिलिट्री का हाल देख लीजिए। मिलिट्री का हाल ये है कि उनके पास अब जो जहाज़ बचे हैं वो कोई भी जहाज़ ऐसा नहीं है जो 30 साल पुराना ना हो, और चीन से जो कुछ इधर उधर लेते भी हैं तो चीन अपना पुराना माल उनको जो है वो सप्लाई कर देता है। और चीन के पुराने माल का हाल ये है कि चीन खुद भी जब आता है तो वो रूस के जहाज़ इस्तेमाल करता है, भारत से जब लड़ाई होती है उसके खुद के जो जहाज़ हैं उनको पीछे रखता है, क्योंकि उसको खुद को भी भरोसा नहीं उनके ऊपर ऐसे लोगों से। तो ये जो JF-17 जिसकी बात करते हैं कि साहब बड़ा मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, उसका ये हाल है कि मलेशिया तक ने उसको लेने से इनकार कर दिया और भारत के तेजस को प्रेफर किया। अब भाई इनके बड़े जंगजू लोग हैं, कहते हैं कि साहब हम तो जंगजू लोग हैं, और हम तो देखिए कि आया कि हम अल्लाह के फेवरेट लोग हैं। वो अल्लाह के फेवरेट लोगों का ये हाल है, ए अब खाने के दाने नहीं मिल रहे। वो जो नहरें भारत ने दे रखी हैं, पता नहीं क्यों दे रखी हैं, उसके मुझे लगता है कि वो भी बंद कर देनी चाहिए, तो क्योंकि ख़ासतौर से ये जो पंजाबी जंगजू क्लास है पाकिस्तान का, इसी को उससे फ़ायदा होता है और उसको जितना नुकसान पहुँचाए उतना ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी भी स्क्रैप कर दो एक बार, तो कम से कम जो इनका जिहादी जुनून है वो आपस में जब झगड़ेंगे तो और ज़्यादा वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो जिहादी जुनून आपस में झगड़ के ख़त्म कर ले, भारत के लिए कुछ स्पेयर ना छोड़ें। और हमारा पाकिस्तान की उसकी आर्थिक स्थिति यह है कि उसके पास एक महीने का भी अब इम्पोर्ट करने का डॉलर नहीं बचा है, और उसकी इंडस्ट्री की स्थिति यह है कि उसको चूंकि बिजली नहीं मिलती इसलिए अब उसके पास एक्सपोर्ट करने को कुछ नहीं बचा है। रॉ मटेरियल पहले भी कुछ नहीं था, और तो अफगानिस्तान वहाँ से जो कोयला एक्सपोर्ट कर रहा था उसके भी दाम उसने बढ़ा दिए और कह दिया लेना हो तो लो, नहीं तो नहीं देंगे। और वो अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते ढूंढते तालिबान को वहाँ पर जैसे ही उसने मुकम्मल किया काबुल में, तो पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो पूरा खित्ता छोड़ के, पूरा रीजन छोड़ के चला गया, और अब उसको पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान के सीपेक का ये हाल है कि चाइना कह रहा है मेरा पैसे वापस दो, चलो पैसे वापस दो इंटरेस्ट के साथ में, पहले पैसे वापस दो फिर बात करेंगे, सीपेक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी ट्रेनें बना रहे थे, रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, मेन लाइन वन जहाँ पेशावर से और कराची तक मॉडर्न रेलवे बनेगी, कुछ नहीं बनी। आपको अगर एक एग्जांपल दे दूं, पाकिस्तान का हाल यह है कि पाकिस्तान में आपको पता है कितनी ट्रेनें चलती हैं? 110 पैसेंजर ट्रेन डेली चलती है। कितनी? 110 पैसेंजर ट्रेन। भारत में कितनी चलती है आपको पता है? 6,500 6,500। पाकिस्तान के पास टोटल लोकोमोटिव कितने आपको पता है? पाकिस्तान के पास टोटल लोकोमोटिव है 250 से 300 डीजल इंजन पुराने खचाड़ा। भारत के पास पता है आपको कितने? भारत के पास है 12,000 से अधिक लोकोमोटिव फंक्शनल, और बहुत सारे तो डीजल इंजन भारत ने अब बंद कर दिए हैं, क्योंकि 40,000 लगभग आधा जो हमारा रूट, आधे से अधिक जो रूट किलोमीटर है वो इलेक्ट्रिफाई हो गया है। तो ये जो बेटा बाप बनने को चला था उसको भारत ने अच्छी तरह से बता दिया है कि बेटा बाप तो बाप ही रहता है, और तुम्हारे जो वो दिवा स्वप्न हैं, तुम्हारे जो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने हैं कि तुम कभी भारत पर कब्जा कर लोगे, तब तुम्हारी हालत तो ये है कि अब तुम्हारे पास तो गोला बारूद खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। और एक इनका इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, उसमें ये लिखा था कि यदि फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाए तो पाकिस्तान का जो गोला बारूद है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो भाई 3 दिन में गोला बारूद ख़त्म हो जाने के बाद में तो फिर भारत के लिए तो कोई दिक्कत कहीं की है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि भारत को इस बारे में सोचना चाहिए। पीओके तो वैसे भी सारा का सारा जो है इस टाइम पे रेस्टलेस है और कह रहा है कि हमें भारत में जाने दो या हमें इंडिपेंडेंट करो, कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अब आप ये बताइए कि जब बैंगन वहाँ पर 400 रुपये किलो मिलेगा तो आम आदमी क्या कहेगा? लेकिन भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारे, तुम्हारे मोमिन भाई तो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो मोमिन भाई हैं उनको तुम बरगला लेते हो सब हर तरह से, वो मोमिन भाई तो हमें नहीं चाहिए, उनको तो वही रखो आप। हाँ, अगर वो जाना चाहें अफगानिस्तान, हिजरत करना चाहें, तो थोड़े बहुत हम भी आपको भेज देते हैं यहाँ से, उनको भी ले लो, क्योंकि उनको बहुत परेशानी होती है भारत में, उनको अच्छा नहीं लगता भारत में, वो इनसिक्योर फील करते हैं। आमिर खान साहब हमारे हैं, उनको भी बहुत इनसिक्योरिटी होती है। शाहरुख खान साहब को पाकिस्तान बहुत पसंद है, और सलमान खान साहब कहते हैं पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको सबको ले लो, आप ले लो ले लो ले लो, बेटा बाप से कंपेरिजन नहीं करते, बाप से कॉम्पिटिशन नहीं करते, और अब हमें तुम्हारी परवाह भी नहीं है, तुम तो जैसे हो वैसे रहो, और गर्त में जाओ, गड्ढे में जाओ, कीचड़ में जाओ, जैसा चाहो वैसा करो, क्योंकि तुमने अपने लिए रास्ता ही वही चुना है। हमें तुमको देखकर अब दया भी नहीं आती, हंसी आती है, और हम तो देखिए हम तो मज़े लेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत मज़े लिए पहले, भारत तुम्हारा दुश्मन है। अबे क्यों दुश्मन है? हमने तो तुमको रिकग्नाइज कर दिया था ना, और किस चीज़ की दुश्मनी निभाते हैं? क्यों? क्योंकि आसमानी किताब में लिखा है काफिर दुश्मन होता है, काफिर जालिम है, और जालिम जो है वो अल्लाह का मुनकर है, इसलिए वो दुश्मन है। हम सब समझते हैं भैया, सब समझते हैं। तो अब तुम मस्त रहो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। आइए।